डॉक्टर क्रेग कीनर अधिनियम व्याख्यान 7 अधिनियम 1 से 2 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह एक्ट्स की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 7 अधिनियम अध्याय 1 और 2 है। अधिनियम अध्याय 1 और 2 हमें गवाही की शक्ति के बारे में सिखाते हैं। वे अंतर सांस्कृतिक साक्ष्य के लिए एक जोर और सशक्तिकरण का परिचय देते हैं जो अधिनियमों की बाकी पुस्तक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अधिनियम 1.8 इसमें केंद्रीय है। सभी प्राचीन कार्यों की शुरुआत में थीसिस कथन या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था, और एक्ट्स उन कार्यों में से एक है जो करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 1 और पद 8 में, जब आत्मा आप पर आएगी तो आप पृथ्वी के छोर के गवाह होंगे। अब अधिनियम 1 और 2 ल्यूक 24 को दोहराते हैं, जो ल्यूक और अधिनियमों के बीच की धुरी है। तो यह एक बहुत ही रणनीतिक खंड है, और यह हमें दिखाता है, और यह हमारे लिए ल्यूकेट्स के एक प्रमुख जोर पर प्रकाश डालता है, अर्थात आत्मा का सशक्तिकरण कि यीशु के मिशन को उसके अनुयायियों द्वारा आगे बढ़ाया जाना है। जाहिर है, दुनिया के लिए मरने, दुनिया को बचाने का उनका मिशन नहीं है, बल्कि दुनिया पर अनुग्रह करने और यीशु ने जो किया है उसकी अच्छी खबर फैलाने का उनका मिशन है। हम इसे अधिनियमों के अध्याय 1 और 2 में देखते हैं। अध्याय 1 श्लोक 4 से 8 तक हम पिंतेकुस्त के वादे के बारे में पढ़ते हैं। 1:12-26 में हम पिंतेकुस्त की तैयारी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें प्रार्थना और नेतृत्व भी शामिल है। 2:1-4 में पिंतेकुस्त के प्रमाण, 2:5-12 पिंतेकुस्त के लोग, 2:17-21 पिंतेकुस्त की भविष्यवाणी, 2:22-40 पिंतेकुस्त का उपदेश और 2:41-47 पिंतेकुस्त का उद्देश्य। सबसे पहले पिंतेकुस्त के वादे को देखते हुए मैं इसे अन्य कुछ की तुलना में अधिक विस्तार से करूंगा। पिंतेकुस्त का वादा इतना महत्वपूर्ण है कि यीशु कहते हैं, यरूशलेम में रहो, पिता ने जो वादा किया है उसकी प्रतीक्षा करो। आत्मा की शक्ति की प्रतीक्षा करना केवल बाहर निकलने और इसे स्वयं करने का प्रयास करने से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम उसकी शक्ति के बिना मसीह के मिशन में सफल नहीं हो सकते हैं। वास्तव में आम तौर पर वह हमें कई मामलों में जो कुछ भी करने के लिए कहता है वह कुछ ऐसा होता है जिसे हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी ताकत के बजाय उसकी ताकत पर निर्भर रहना सीखते हैं। श्लोक 6 में शिष्य स्पष्ट प्रश्न पूछते हैं। यीशु राज्य के बारे में बात करते रहे हैं। वह आत्मा के बारे में बात कर रहा है। खैर, आत्मा का उंडेला जाना इसराइल की अंतिम समय की बहाली से जुड़ा था। आपके पास वह यशायाह 44:3 में है। आपके पास यह यशायाह शायद 61, शायद 59 में है। आपके पास यह यहेजकेल 36:37 और 39 में है। आपके पास यह जोएल अध्याय 2 इत्यादि में है। तो यीशु आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। वह राज्य के बारे में बात कर रहा है। और शिष्य स्पष्ट प्रश्न पूछते हैं, क्या यही वह समय है जब आप इसराइल को राज्य बहाल करने जा रहे हैं? और यीशु यह कहकर उत्तर देते हैं, ठीक है, अभी तक समय या ऋतुओं को जानना तुम्हारे लिए नहीं है। राज्य की पराकाष्ठा आ जाएगी, पद 7। लेकिन आत्मा अब दी जाने वाली है, श्लोक 8, दुनिया को पहले से तैयार करने के लिए, गवाहों को पहले से तैयार करने के लिए। आत्मा अंत समय से जुड़ी थी, इसलिए यीशु के अनुयायियों को भविष्य के युग का जीवन प्रदर्शित करना चाहिए। यह शिष्यों को इंगित करने जैसा होगा कि आपको आने वाली दुनिया का पहले से ही अंदाजा है। और यदि चारों ओर की दुनिया चर्च की ओर नहीं देख सकती और यह नहीं देख सकती कि स्वर्ग कैसा होगा या यह नहीं देख सकती कि नई दुनिया कैसी होगी, तो इसका कारण यह है कि चर्च चर्च के जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित रह रहा है। क्योंकि यीशु ने हमें आत्मा दी है, आने वाले युग का पूर्वाभास। और निश्चित रूप से हम देखते हैं कि पूरे नए नियम में पहले से ही जोर दिया गया है, अभी तक नहीं। जो राजा अभी आना था वह पहले ही आ चुका है। इसलिए हम दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन वह पहले ही एक बार आ चुका है। मृतकों का पुनरुत्थान, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन शिष्य यीशु में मृतकों में से पुनरुत्थान का प्रचार करने में सक्षम थे। प्रेरितों के काम 4:04, क्योंकि यीशु पहले ही पुनर्जीवित हो चुके थे। पहला फल 1 कुरिन्थियों 15 कहता है, मृतकों में से पहला जन्म। हम अन्यत्र आत्मा के साथ जुड़ाव देखते हैं। इब्रानियों अध्याय 6 कहता है कि हमने आत्मा प्राप्त कर ली है, हमने आत्मा का स्वाद चख लिया है और हमने आने वाले युग की शक्तियों का स्वाद चख लिया है। गलातियों 1:4, हमें इस वर्तमान दुष्ट युग से छुटकारा मिल गया है। रोमियों 12:2, इस युग के अनुरूप नहीं है, लेकिन ऐसे ग्रंथ जो वास्तव में उस संबंध में सीधे आत्मा का उल्लेख करते हैं। हमारे पास आत्मा का पहला फल है, रोमियों 8:23। हमारे पास डाउन पेमेंट है, क्योंकि यीशु पहले ही पुनर्जीवित हो चुके थे। पहला फल 1 कुरिन्थियों 15 कहता है, मृतकों में से पहला जन्म। हम अन्यत्र आत्मा के साथ जुड़ाव देखते हैं। इब्रानियों अध्याय 6 कहता है कि हमने आत्मा प्राप्त कर ली है, हमने आत्मा का स्वाद चख लिया है और हमने आने वाले युग की शक्तियों का स्वाद चख लिया है। यह एक ग्रीक शब्द है, एरेबोन। इसका उपयोग व्यावसायिक दस्तावेजों में किया जाता है, जिसका अर्थ है वास्तविक पहली किस्त, पहला भुगतान। हमारे पास हमारी भविष्य की विरासत की शुरुआत है। इफिसियों 1:2 कुरिन्थियों 1:2 कुरिन्थियों 5, हमारे पास हमारी भविष्य की विरासत का अग्रिम भुगतान है। 1 कुरिन्थियों 2:9-10, पौलुस कहता है, न आँख देखी जाती है, न कान सुनता है, न वह मनुष्य के हृदय में चढ़ती है, परंतु जो बातें परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं, परंतु परमेश्वर ने उन्हें हम पर प्रकट किया है उसकी आत्मा से। तो आत्मा के द्वारा हमें आने वाली दुनिया का पूर्वाभास होता है, और दुनिया को हमें देखने और यह देखने में सक्षम होना चाहिए कि आने वाली दुनिया कैसी होगी। आने वाली दुनिया कैसी होगी, इसका एक नमूना यीशु ने कहा कि जब आत्मा तुम पर आएगी तो तुम्हें शक्ति मिलेगी। हमने इसके बारे में पहले परिचय में बात की थी कि ल्यूक में, सुसमाचार में और अधिनियमों की पुस्तक में शक्ति विशेष रूप से नहीं है, बल्कि अक्सर उपचार और राक्षसों को बाहर निकालने से जुड़ी होती है। तो अंततः इसे ही कुछ लोगों ने शक्ति प्रचारवाद कहा है, अर्थात परमेश्वर अपने वचन का समर्थन शक्ति से करता है। इसीलिए हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में संकेत और चमत्कार देखते हैं जो लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं। अब आपने सुना होगा कि मैं विभिन्न बिंदुओं पर लगातार अर्हता प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन हम हमेशा ऐसा होते हुए नहीं देखते हैं। लेकिन यदि आप ऐसी जगह पर हैं जहां यह हमेशा हो रहा है, तो कृपया शिकायत न करें, बस इसमें आनंद मनाओ। लेकिन शक्ति आत्मा से जुड़ी है। पुराने नियम में अक्सर आत्मा को भविष्यवक्ताओं और भविष्य सूचक भाषण और कभी कभी अन्य प्रकार के भविष्य सूचक कार्यों के साथ जोड़ा जाता है। प्रारंभिक यहूदी धर्म ने विशेष रूप से वह जुड़ाव बनाया। यही वह था जिसे उन्होंने सबसे अधिक विकसित किया। आत्मा के कुछ अन्य संबंध अन्यत्र भी प्रकट होते हैं, और विशेष रूप से मृत सागर स्क्रॉल और जुबलीज में चीजें संभवतः एसेंस से जुड़ी हुई हैं। वे स्रोत आत्मा को शुद्धि से जोड़ते हैं, लेकिन वे भविष्य सूचक सशक्तिकरण का भी उल्लेख करते हैं। और अन्य यहूदी स्रोत हर जगह भविष्य सूचक सशक्तिकरण के साथ आत्मा का उल्लेख करते हैं। इसलिए जब यीशु कहते हैं कि आप आत्मा से शक्ति प्राप्त करने जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वह शिष्यों को देख रहे हैं और कह रहे हैं, आप यहेजकेल की तरह होंगे, तुम यिर्मयाह के समान हो जाओगे, आप यशायाह की तरह होंगे, आप हुल्दा या मिरियम या डेबोरा या डैनियल की तरह होंगे। हमें विभिन्न प्रकार के उपहार दिए गए हैं। पुराने नियम में एलियाह विभिन्न प्रकार के भविष्यवक्ता थे, लेकिन वही शक्ति जो पुराने पैगंबरों को दी गई थी, वही शक्ति हमें दुनिया को यीशु के बारे में बताने के लिए दी गई है। यीशु कहते हैं कि पृथ्वी के छोर तक के साक्षी होंगे। भाषा यशायाह को प्रतिबिंबित करती है, और यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह पवित्र शास्त्र को प्रतिबिंबित करेगा, क्योंकि लूक 24 जब यह कमीशन देता है, यशायाह की पुस्तक में पहले से भाषा का उपयोग करके उच्च शक्ति के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है कि यीशु धर्मग्रंथ के आधार पर यह शिक्षा दे रहे थे, इसलिए उन्हें यह कहते हुए उस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि यह अधिनियम 1 में धर्मग्रंथ पर आधारित है, ताकि लोगों को एहसास हो सके, हाँ, यह धर्मग्रंथ पर आधारित है। वे परमेश्वर के गवाह होंगे। यशायाह 43:10, यशायाह 44:8, यहोवा के गवाह। लेकिन यहाँ वे किसके गवाह हैं? यीशु कहते हैं कि तुम मेरे गवाह होगे। यह यीशु के दिव्य होने के विषय पर बहुत स्पष्ट रूप से फिट बैठता है। निःसंदेह आपने इसे लूक के सुसमाचार में बहुत पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। यहां तक कि जब जॉन बैप्टिस्ट उपदेश देते हैं, तो उद्धरण यशायाह 40:3 से है, जंगल में किसी के रोने की आवाज, हमारे भगवान के लिए रास्ता तैयार करो। यहोवा के मार्ग का संदर्भ देते हुए, प्रभु प्रभु का मार्ग तैयार करो। और फिर यह अन्य जातियों सहित सभी प्राणियों के बारे में बात करता है। दूसरे शब्दों में अपने ईश्वर का उद्धार देखना। खैर, यहाँ अधिनियम 1:08 में एक बहुत ही स्पष्ट ईसाई संदेश है, जिसमें यह भी शामिल है कि यीशु दिव्य है। और हमारा मिशन इस मिशन को आगे बढ़ाना है, जिसके बारे में यशायाह की किताब में भगवान के लोगों को बताया गया था। जब वे आत्मा प्राप्त करेंगे, तो वे गवाह होंगे। और यशायाह के उस भाग में भी आत्मा के साथ जुड़ाव है। और यह पृथ्वी के छोर तक होगा, यीशु यहाँ अधिनियम 1:8 में कहते हैं। खैर, यह कई अंशों को प्रतिध्वनित कर सकता है, लेकिन विशेष रूप से यह यशायाह 49:6 को प्रतिध्वनित करता है, जो पृथ्वी के छोर तक मिशन, पृथ्वी के छोर तक प्रकाश के बारे में बात करता है। और यह वास्तव में अधिनियम 13:47 में उद्धृत किया गया है, जहां यह पॉल के अपने मंत्रालय पर लागू होता है। यह सिर्फ 12 लोगों के लिए नहीं है। अब यीशु यहाँ सीधे तौर पर 12 को संबोधित कर रहे हैं, बल्कि 11 को। यहूदा की मृत्यु हो गई है, लेकिन वह सिर्फ 11 को संबोधित नहीं कर रहे हैं। यदि आप लूक अध्याय 24 के अंत को देखें, तो यह 11 और जो उनके साथ थे, उन्हें संबोधित कर रहे हैं। तो शुरुआत में यह उससे थोड़ा बड़ा है। जिन्हें सीधे तौर पर गवाह कहा गया, खासकर वे जो यीशु के साथ थे। 11 यहूदा की जगह लेने वाला व्यक्ति भी 12 में से एक बन जाता है। वे मूल रूप से इन चीजों के गवाह थे, लेकिन प्रेरितों के काम में पॉल को भी गवाह कहा गया था। इसी प्रकार प्रेरितों के काम में स्तिफनुस को गवाह कहा गया है। इसके अलावा आत्मा न केवल 12 को दी गई है, बल्कि इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सभी विश्वासियों को भी आत्मा दी जाएगी। और आप इसे अधिनियमों के अध्याय 2:38-39 में स्पष्ट रूप से देखते हैं, उसी भाषा का उपयोग करते हुए जो हम यहाँ इस संदर्भ में उपयोग करते हैं, जहाँ आप आत्मा का उपहार प्राप्त करते हैं, आपको वह प्राप्त होता है जो वादा किया गया है इत्यादि। खैर, यह अधिनियमों में एक प्रमुख विषय का परिचय देता है। सुसमाचार फैल गया और आप इसे अधिनियमों की पुस्तक में सारांश कथनों के माध्यम से देखते हैं। प्रभु ने प्रतिदिन संख्या बढ़ा दी 247। परमेश्वर का वचन फैल गया 67। चर्च की संख्या बढ़कर 931 हो गई। 1224 बात बढ़ती गई 1605। 1920 में चर्चों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती गई। बात फैलती गई और बढ़ती गई 2831। बिना किसी रुकावट के उन्होंने उपदेश दिया। ये यरूशलेम में वर्ग सीमाओं के पार यहूदिया और गलील में, आगे यहूदिया में, दक्षिणी एशिया माइनर में, शहरी इफिसस में, रोम में इत्यादि में चर्च के विकास को दर्शाते हैं। यह सिर्फ यह दिखा रहा है कि अच्छी खबर कैसे आगे बढ़ती है। इससे भी अधिक स्पष्ट रूपरेखा हमारे पास प्रेरितों के काम अध्याय 1 और पद 8 में है, लेकिन यह एक बहुत ही कच्ची रूपरेखा है। इसका अभिप्राय कोई विस्तृत रूपरेखा नहीं है, बल्कि प्रेरितों के काम अध्याय 1 और श्लोक 8 इस बात का एक सारांश विवरण देते हैं कि सुसमाचार कहा जा रहा है। यरूशलेम अध्याय 1 से 7, यहूदिया और सामरिया अध्याय 8 और 9, और फिर पृथ्वी के छोर तक वहां से परे हर जगह अध्याय 10 से 28 में पवित्र भूमि से परे, जहां यह विशेष रूप से डायस्पोरा मिशन का प्रभुत्व है, जहां पॉल सबसे प्रमुख व्यक्ति है। अध्याय 10 और 11 में गैर यहूदी, अध्याय 8 में पहले से ही दर्शाया गया है, 13 और 14 में साइप्रस और दक्षिणी तुर्की, पुस्तक का एक धार्मिक केंद्र, कई लोग अध्याय 15, एशिया और ग्रीस 16 से 20 तक, और फिर यरूशलेम के माध्यम से रोम के मार्ग पर विचार करते हैं, और अंतिम तिमाही में कैसरिया 21 से 28 तक। भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ल्यूक का सुसमाचार यरूशलेम में मंदिर के साथ शुरू और समाप्त होता है। ल्यूक 24 में अंत में जकर्याह को मंदिर में दर्शन मिलने और शिष्यों द्वारा यरूशलेम के मंदिर में प्रार्थना करने से। लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तक यरूशलेम से रोम की ओर बढ़ती है, जहां ल्यूक का सुसमाचार समाप्त हुआ था, और इसका एक धार्मिक कारण है। धार्मिक रूप से हम कह सकते हैं कि ल्यूकेट विरासत से मिशन की ओर बढ़ता है। यह सबसे पहले यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ विरासत पर आधारित है, ताकि आप समझ सकें कि सुसमाचार कहा जा रहा है, इसकी भविष्यवाणी की गई थी। यह वही है जो इज़राइल के इतिहास में पहले से ही मौजूद था। लेकिन इज़राइल का ये इतिहास, इज़राइल के इतिहास को त्यागे बिना, विरासत को त्यागे बिना, वहां से भी आगे मिशन की ओर बढ़ रहा है। अब ल्यूक के दर्शकों के लिए साम्राज्य में होना, साम्राज्य के केंद्र तक पहुंचना प्रेरितों के काम की पुस्तक के लिए एक महत्वपूर्ण चरमोत्कर्ष था। परंतु वास्तव में प्रेरितों के काम की पुस्तक खुली हुई है। यह कहता है कि सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक जाता है। पृथ्वी के छोर कहाँ है? खैर, उस समय अलग अलग चीजें थीं जिन्हें पृथ्वी के छोर का लेबल दिया गया था। पृथ्वी के पश्चिमी छोर को स्पेन और नदी महासागर माना जाता था, जो पूरी पृथ्वी के चारों ओर बहती थी। हालांकि कुछ लोग स्पेन से भी अधिक पश्चिम की चीजों के बारे में जानते थे, और यहां तक कि कुछ चीजें जिसे वे नदी महासागर मानते थे, उससे भी अधिक पश्चिम की चीजों के बारे में जानते थे। पूर्व में आपके पास पार्थिया था, आपके पास भारत था, आपके पास चीन था। चीन के साथ व्यापारिक संबंध थे। वे ऐसी जगहों के बारे में जानते थे। तो पृथ्वी के अंतिम छोर, उन्हें पहले से ही पता था कि इसमें भारत और चीन जैसे स्थान शामिल होंगे। उत्तर में सिथिया जैसी जगहें, जो आंशिक रूप से रूस, जर्मनी, ब्रिटेन हैं। दक्षिण में वे अफ्रीका, दक्षिण में मिस्र के बारे में जानते थे। दक्षिण में तंजानिया तक व्यापारिक संबंध थे। वास्तव में उन्हें सुदूर दक्षिण में सीजर की एक प्रतिमा मिली है। अध्याय 8 में श्लोक 29 में मेरो का न्यूबियन साम्राज्य दिखाई देता है, जो मिस्र के दक्षिण में एक बहुत शक्तिशाली राज्य था, जिसके बारे में रोम को पता था और रोम ने खुद को वश में करने में असमर्थ पाया और उसे बस उसके साथ व्यापार संबंध और शांति संधि करनी पड़ी। इसलिए वे रोम से परे पृथ्वी के छोर के बारे में जानते थे। वे उत्तर, दक्षिण और मध्य अमेरिका के बारे में नहीं जानते थे। इसलिए वे उस गोलार्ध के बारे में नहीं जानते थे जिसमें मैं रहता हूं, लेकिन वे जानते थे कि यह रोम से आगे तक जाता है। ल्यूक के दर्शकों के लिए रोम महत्वपूर्ण है, लेकिन रोम पृथ्वी के अंत का पूर्वसूचक संकेत है। ठीक वैसे ही जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 8 में अफ्रीकी अधिकारी का रूपांतरण पृथ्वी के दक्षिणी छोर तक सुसमाचार के पहुंचने का पूर्वाभास है, ठीक वैसे ही जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 2 में है, जहां आपके पास स्वर्ग के नीचे हर देश के यहूदी लोग हैं, यह पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार के जाने का पूर्वाभास है। इसलिए ल्यूक हमें भविष्य के वादे की याद दिलाता रहता है। मिशन ओपन एंडेड है, यह आज भी जारी है। प्रेरितों के काम की पुस्तक खुली हुई है, यह भविष्य में खुलता है। यद्यपि ल्यूक के केवल 2 खंड हैं, हम जानते हैं कि इतिहास आगे बढ़ चुका है। खैर, प्रेरितों के काम अध्याय 1 छंद 9 से 11 में बाइबल का एक और भ्रम है। यीशु स्वर्ग में चढ़ता है। ठीक है, यूनानियों ने लोगों के स्वर्ग जाने की कहानियां कही हैं, रोमनों ने और यहूदी लोगों ने, लेकिन यहूदी लोगों के इन अन्य चीजों के संपर्क में आने से पहले पुराने नियम में एक कहानी है, और यह वह है जिससे ल्यूक के दर्शक सबसे अधिक परिचित होंगे, क्योंकि यह उनके सिद्धांत में है, यह शास्त्र में है, यह कुछ ऐसा है जो उन्होंने नियमित रूप से सुना होगा। एलिया स्वर्ग पर चढ़ गया, और जब उसने द्वितीय किंग्स अध्याय 2 में ऐसा किया तो क्या हुआ? उसने अपनी आत्मा का दुगना भाग एलिशा के लिए छोड़ दिया। तो यीशु अध्याय 1 छंद 9 से 11 में स्वर्ग की ओर आरोहण कर रहा है, लेकिन उसने शिष्यों को उसी आत्मा का वादा किया है जिसने उसे सशक्त बनाया है। प्रेरितों 10:38, ल्यूक 4:18, वही आत्मा जिसने यीशु का अभिषेक किया था, अब वही आत्मा है जो हमारे मिशन को पूरा करने के लिए चर्च को सशक्त बनाएगा। और जैसे एलिशा के मिशन को आगे बढ़ा रहा था, हमें यीशु के मिशन को आगे बढ़ाना है। फिर दुनिया के पापों के लिए मरने के लिए नहीं, बल्कि उन चीजों के लिए जो आत्मा ने यीशु को लोगों को उपचार और कल्याण लाने और राज्य की खुशखबरी का प्रचार करने के लिए सशक्त बनाया। इसी प्रकार हमारे पास पिंतेकुस्त की तैयारी के बारे में भी एक अनुभाग है। मैं इस अनुभाग पर उतना समय खर्च नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन उन्हें नेतृत्व संरचना को फिर से स्थापित करना होगा, क्योंकि उनके पास एक घोटाला था। एक नेता गिर गया और मर भी गया। उन्हें इस विश्वास के साथ तैयारी करने की जरूरत है कि भगवान उनका उपयोग करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे डेविड को मंदिर बनाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसने सामग्री जमा की ताकि सुलेमान मंदिर बना सके। उनके लिए अभी जाने का समय नहीं है, लेकिन वे इस विश्वास के साथ तैयारी करते हैं कि भगवान वादा की गई बहाली लाने जा रहे हैं। इसलिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि 12वें शिष्य को नियुक्त किया जाए। इसलिए वे उस संख्या तक वापस आ जाते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, क्योंकि यीशु ने कहा था, आप इसराइल के 12 जनजातियों का न्याय करते हुए 12 सिंहासनों पर बैठने जा रहे हैं। इसके अलावा वे श्लोक 14 में एक साथ प्रार्थना करते हैं, आपके पास पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं, और वे आत्मा के उंडेले जाने से पहले प्रार्थना कर रहे हैं। यह विषय है, जैसा कि हमने अपने परिचय में देखा, जो पूरे ल्यूक 1 में चलता है। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग शायद परिचय नहीं चाहते थे, आप सीधे पाठ में आना चाहते थे और इसलिए आपने परिचय छोड़ दिया। यदि आप यही करना चाहते हैं तो यह ठीक है। लेकिन संक्षेप में यह एक ऐसा विषय है जो ल्यूक 1 में बार बार आता है, लेकिन आत्मा के आने से पहले प्रार्थना के संदर्भ में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ल्यूक 1 में यह लगातार विषय है। आत्मा यीशु पर तब आती है जब वह अपने बपतिस्मा पर प्रार्थना कर रहा होता है। आप उनसे यहाँ प्रार्थना करवाते हैं और फिर प्रेरितों के काम अध्याय 2 में आत्मा को उंडेला जाता है। प्रेरितों के काम अध्याय 4 में वे प्रार्थना कर रहे हैं और वे आत्मा से भरे हुए हैं ताकि वे मिशन को जारी रख सकें। प्रेरितों के काम अध्याय 8 में उन्होंने सामरियों के लिए आत्मा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की और आत्मा सामरियों पर आ गई। प्रार्थना भी अधिनियम 9 और अधिनियम 10 में आत्मा के उंडेले जाने से पहले होती है, हालांकि इन मामलों में ल्यूक द्वारा संबंध को स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन दोनों मामलों में इसका उल्लेख किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर अपनी आत्मा को इसी तरह से प्रकट करता है। वास्तव में प्रेरितों के काम 10 में जब ऐसा होता है तो पत्रस आश्चर्यचकित हो जाता है, भले ही वह यह सब घटित होने से पहले प्रार्थना कर रहा था। साथ ही कुर्नेलियुस भी ऐसा होने से पहले प्रार्थना कर रहा था, लेकिन वे विशेष रूप से आत्मा के उंडेले जाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे। मेरा मानना है कि लगभग 4000 पेज की एक्ट्स कमेंट्री लिखने में मुझे जो कुछ पता चला है, जैसा कि मैंने एक्ट्स की पुस्तक के माध्यम से काम किया है, शायद आज चर्च के लिए सबसे महत्वपूर्ण या कम से कम आज चर्च के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है। परमेश्वर ने प्रेरितों के काम की पुस्तक में अपनी आत्मा उंडेल दी। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चर्च को उस मिशन को पूरा करने के लिए भावना की आवश्यकता है जो भगवान ने हमें दिया है। हम यह काम अपने आप नहीं कर सकते। यह परमेश्वर ही है जो इसे बढ़ाता है। यह ईश्वर है जो इसकी गणना करता है। यह भगवान ही है जो इसे फलीभूत करता है। मुख्य शर्त शायद शर्त नहीं, लेकिन आत्मा के उंडेले जाने से पहले हम जो मुख्य तैयारी कर सकते हैं वह प्रार्थना है। यदि हम ईश्वर को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो आइए उससे इसके लिए पूछें, क्योंकि उसने हमसे वादा किया था। यीशु ने ल्यूक 11:13 में हमसे वादा किया था। मैथ्यू में, यदि आप अच्छे उपहार मांगेंगे तो आपके पिता आपको अच्छे उपहार देंगे। लेकिन ल्यूक एक विशेष रूप से अच्छे उपहार पर ध्यान केंद्रित करता है। यदि तुम रोटी मांगोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हें पत्थर नहीं देगा। यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं न देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? आइए हम उनसे हम पर आत्मा के उंडेले जाने के लिए प्रार्थना करें। आइए हम उनसे दुनिया भर में उनके चर्च पर आत्मा के उंडेले जाने के लिए प्रार्थना करें कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजेंगे, जैसा कि उन्होंने हमें इसके लिए प्रार्थना करने का निर्देश दिया है। पेंटेकोस्ट के दिन के लिए कई तीर्थयात्री मंदिर में एकत्र हुए, और इसलिए यह एक रणनीतिक समय था जब बहुत से लोग वहां एकत्र होंगे। और अध्याय 2 में श्लोक 2-4 तक हमारे पास वह पूरा खंड है जिसे प्रार्थना में तैयार किया गया है। शिष्य उस खंड में सुबह सुबह प्रार्थना कर रहे हैं, और अध्याय 2 और पद 1 वे सभी एक ही स्थान पर और एक समझौते पर एक साथ हैं। वे क्या कर रहे हैं? खैर, संभवतः वे अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं। लोग भले ही आ जा रहे हों, लेकिन प्रार्थना सभा अभी भी जारी है। लेकिन अध्याय 2 में श्लोक 2-4 तक हमें पिंतेकुस्त का प्रमाण मिलता है जैसे आत्मा उंडेला जा रहा है। अध्याय 2 और श्लोक 2 में आपके पास एक तेज तेज हवा की आवाज है, और यह थियोफनी को उद्घाटित करती है। अक्सर आपके मन में हवा की आवाज जैसा कुछ होता है जब भगवान स्वयं को पुराने नियम में प्रकट करते हैं। इसके अलावा यह यहेजकेल 37 में पुनरुत्थान जीवन अंत समय के पुनरुत्थान जीवन से जुड़ा हो सकता है। परमेश्वर अपने लोगों की सूखी हड्डियों को पुनर्जीवित करने और अपने लोगों की बहाली लाने के लिए हवा की तरह अपनी रुआच अपनी आत्मा भेजता है। तो आपके पास हवा है। अध्याय 2 के श्लोक 3 में भी आपके पास अग्नि है। आग फिर से एक थियोफनी को उद्घाटित करती है। अक्सर भगवान पुराने नियम में अपनी महिमा प्रकट करते हुए आग की तरह आते हैं, लेकिन इसके अलावा आग जुड़ी हुई है, जैसे यशायाह 66, और इसी तरह आग युगांत शास्त्रीय निर्णय से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, जिसे पहली शताब्दी में व्याख्याकारों द्वारा अंत समय के निर्णय के रूप में समझा जाएगा। इन्हें बाद में प्रेरितों के काम की पुस्तक में आत्मा के उंडेले जाने पर दोहराया नहीं गया है। वे यहाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे दिखाते हैं कि भगवान प्रकट हो रहे हैं। वे भविष्य का पूर्वाभास, युगांत विज्ञान का पूर्वाभास भी दिखाते हैं, लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तक में आत्मा के बाद के उंडेले जाने पर उन्हें दोहराया नहीं जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें कभी दोहराया नहीं जा सकता। इन्हें अतीत में आत्मा के कुछ उंडेले जाने पर दोहराया गया है। हवा आई, और मेरा मानना है कि इंडोनेशिया में तिमोर, पश्चिमी तिमोर के पुरुद्धार की शुरुआत में शायद आग भी भड़क उठी। 20वीं सदी के शुरुआती पहले दशक में 1904 के आसपास भारत में पंडिता रमाबाई के अनाथालय में आत्मा के उंडेले जाने से आप में भी आग भड़क उठी थी। लेकिन तीसरा संकेत जो इस मामले में दिया गया है वह यह है कि वे अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। वे अन्य भाषाओं और भाषाओं में बोलना शुरू करते हैं। यह ल्यूक के लिए इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे अध्याय 10 श्लोक 46 और अध्याय 19 श्लोक 6 में प्रारंभिक रूप से दोहराया गया है। यह स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यह यहाँ बहुसांस्कृतिक दर्शकों के लिए उत्प्रेरक प्रदान करता है। यह लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, और इस मामले में यह अंतर सांस्कृतिक रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। इन सभी विभिन्न स्थानों के यहूदी लोग गौण रूप से विभिन्न संस्कृतियों का हिस्सा हैं। यह पत्रस के संदेश को भी स्थापित करता है क्योंकि यह कहता है कि जब यह ध्वनि सुनी गई तो लोगों ने कहा, इसका क्या अर्थ है? और पत्रस कहता है, योएल का यही मतलब था जब उसने कहा, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडे लूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। खैर, यह अध्याय 1 के श्लोक 8 में प्रेरितों के काम के विषय से संबंधित है। आप कहते हैं वह कैसे? पीतर 2:17 में इसकी व्याख्या करता है, और 2:18 भविष्यवाणी की भावना है जिसके बारे में जोएल ने बात की थी। अधिनियमों के अध्याय 1 की 8वीं पंक्ति आत्मा के बारे में बात करती है जो हमें गवाही देने के लिए सशक्त बनाती है। ये एक साथ कैसे संबंधित हैं? याद रखें कि यह प्रेरितों के काम अध्याय 1 की 8वीं आयत में गवाह के बारे में क्या कहता है। यह आत्मा से प्रेरित प्रेरित भाषण है। यह भविष्य सूचक भाषण है जो 2:17 और 2:18 पर फिट बैठता है, लेकिन यह यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों पर भी लागू होता है। यह अंतर सांस्कृतिक भाषण है। ईश्वर अपने चर्च को इससे बड़ा संकेत क्या दे सकता है कि वह उन्हें सभी सांस्कृतिक बाधाओं को पार करने के लिए सशक्त बना रहा है, बजाय इसके कि वह पेंटेकोस्ट के दिन लोगों को अन्य लोगों की भाषाओं में ईश्वर की पूजा शुरू करने में सक्षम बनाए। वह उन्हें इससे बड़ा रास्ता क्या दिखा सकता है कि यही वह उद्देश्य है जिसके लिए मैं आपको भविष्यवाणी की भावना से सशक्त बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप अपना मनोरंजन कर सकें, बल्कि मैं आपको पृथ्वी के छोर तक भेजने के लिए भविष्यवाणी की भावना से सशक्त बना रहा हूँ। यही आत्मा के उंडेले जाने का उद्देश्य है। अब यदि आप इस बारे में चर्चा के पिछली सदी के इतिहास को देखें, तो 19वीं सदी के अंत में कट्टरपंथी इंजीलवादी पवित्रता और मिशन और उपचार पर जोर दे रहे थे। यह एक अंतरसांप्रदायिक आंदोलन था। इसका बहुत सारा हिस्सा मेथोडिज्म से आया, लेकिन इस बिंदु पर यह प्रेस्बिटेरियन के बीच फैल गया था। यह कई अलग अलग चर्चों में फैला हुआ था। पवित्रता, मिशन और उपचार पर जोर, और बहुत से लोग पवित्र आत्मा में, जिसे वे बपतिस्मा कहते थे, उसकी तलाश कर रहे थे। मैं वास्तव में अधिनियम 1.4.5 में इस पर नहीं गया कि इसका क्या मतलब है। मैं नहीं जानता कि क्या मैं कई अलग अलग चीजों में गए बिना संक्षेप में इससे निपट सकता हूँ। परंपरागत रूप से सुधारवादी चर्चों ने कहा है कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा रूपांतरण का प्रतिनिधित्व करता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उपयोग 1 कुरिन्थियों 12:13 में किया गया है, जहां किसी को आत्मा द्वारा मसीह के शरीर में बपतिस्मा दिया जाता है। परंपरागत रूप से वेस्लियन और पवित्रतान्मुख चर्चों और पेंटेकोस्टल ने कहा है कि यह रूपांतरण के बाद होने वाली किसी चीज पर लागू होता है, और उन्होंने प्रेरितों के काम की पुस्तक में परिवर्तन के बाद आत्मा के साथ अनुभव करने वाले लोगों की ओर इशारा किया है। याद रखें कि यह वही बात है जो जॉन बैप्टिस्ट ने भविष्यवाणी की थी। जॉन द बैप्टिस्ट ने मैथ्यू 3 और ल्यूक 3 दोनों में पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा लेने की बात कही है, और संदर्भ में आपको इसके बीच एक विरोधाभास मिला है। संभवतः लोगों को या तो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया जाएगा या उन्हें आग में बपतिस्मा दिया जाएगा। मेरे पास उस सब में जाने का समय नहीं है, लेकिन यदि आप संदर्भ को देखें तो आग स्पष्ट रूप से पवित्रता में बपतिस्मा नहीं है, हालांकि हम सभी पवित्रता के महत्व की पुष्टि करते हैं। लेकिन जब यह आग में बपतिस्मा लेने की बात करता है, तो बस संदर्भ को स्वयं देखें। जब आपके पास अवसर होता है, तो संदर्भ निर्णय की आग के बारे में बात कर रहा होता है। मैथ्यू में वास्तव में यह ठीक पहले की कविता है और ठीक बाद की कविता है, दोनों ही निर्णय की बात करते हैं। ल्यूक, यह थोड़ा अधिक फैला हुआ है, लेकिन यह अभी भी वहां काफी स्पष्ट है। इसके ठीक चारों ओर आग के बारे में बात करने वाले दो छंद न्याय के बारे में बात कर रहे हैं। तो या तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगी या आपको आग मिलेगी। इससे यह संकेत मिल सकता है कि यह रूपांतरण को संदर्भित करता है। साथ ही जॉन द बैप्टिस्ट को भी पता था, जैसा कि भविष्यवक्ता जोएल ने कहा था, जिसे पत्रस ने प्रेरितों के काम अध्याय 2 में उद्धृत किया है, कि जब आत्मा उंडेला जाएगा तो आपके बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। यह वह आत्मा थी जो परमेश्वर के लोगों को सशक्त बनाएगी। तो हम उन चीजों को एक साथ कैसे रखें? खैर, ल्यूक आत्मा के कार्य के एक पहलू पर जोर देने जा रहा है। वह अन्य पहलुओं से इनकार नहीं कर रहे हैं। वह धर्म परिवर्तन से इनकार नहीं कर रहे हैं। मेरा मानना है कि वह उन्हें वास्तव में 2:38 और 2:39 में जोड़ता है, लेकिन वह विशेष रूप से गवाही के लिए शक्ति और इस भविष्य सूचक सशक्तिकरण के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रेरितों के काम में इस उद्घाटन उपदेश में पीटर ने इसकी व्याख्या इसी प्रकार की है। ल्यूक के सुसमाचार में यीशु के उद्घाटन उपदेश का संबंध मिशन के लिए सशक्तिकरण से भी है, हालांकि वह इसके लिए एक अलग पाठ लेता है। तो यह ल्यूक का जोर होगा, यह कहने के लिए नहीं कि वह अन्य चीजों से इनकार करता है, यह कहने के लिए नहीं कि वह कभी भी किसी और चीज के बारे में बात नहीं करता है। प्रेरितों के काम 13 में लोग आत्मा से भर जाते हैं और जब वे आत्मा से भर जाते हैं तो वे आनंद से भर जाते हैं। तो आत्मा को विभिन्न चीजों के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से मिशन के लिए सशक्तिकरण के साथ। अब यह सवाल उठा कि क्या ऐसा हमेशा धर्म परिवर्तन के समय होता है या कभी कभी धर्म परिवर्तन के बाद भी हो सकता है। खैर, सैद्धांतिक रूप से मेरा मानना है कि यह रूपांतरण के समय होता है। हमें आत्मा के कार्य के संपूर्ण पैकेज तक पहुंच प्राप्त होती है, लेकिन व्यवहार में सैद्धांतिक रूप से पॉल के अनुसार हम सभी परिवर्तन के समय पाप के प्रति मृत हो गए, लेकिन व्यवहार में हम में से कुछ लोग अलग अलग समय पर इसे अधिक उपयुक्त बनाते हैं। मुझे लगता है कि जब जॉन द बैप्टिस्ट आत्मा में बपतिस्मा के बारे में बात कर रहा था तो वह आने वाले युग में आत्मा के कार्य के पूरे क्षेत्र की कल्पना कर रहा था, और नए नियम के विभिन्न अनुच्छेद इसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और आपके पास अलग अलग चर्च हैं जो उसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, विभिन्न अनुच्छेदों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए मैं इसे इस रूप में नहीं देखता कि यह चर्च सही है और वह चर्च गलत है। मैं इसे ऐसे देखता हूं कि हमें परिवर्तन के लिए आत्मा की आवश्यकता है, हमें सशक्तिकरण के लिए आत्मा की भी आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जब हम शब्दार्थ से आगे निकल जाते हैं तो हम सभी सहमत होते हैं, क्योंकि एक तिमोथी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमें शब्दों के बारे में बहस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। शब्दों के बारे में बहस करने का कुछ महत्व हो सकता है, लेकिन आइए मामले के मूल पर चलते हैं। वस्तुतः हम सभी इस बात से सहमत हैं कि रूपांतरण के समय हमें किसी न किसी तरह से आत्मा प्राप्त होती है, और निश्चित रूप से रूपांतरण के समय आत्मा तक पहुंच होती है। मुझे लगता है कि वस्तुतः हम सभी इस बात से सहमत हैं कि बाद के रूपांतरण के बाद हमें पवित्र आत्मा के साथ अनुभव हो सकता है। वास्तव में प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम लोगों को आत्मा के साथ अनेक अनुभव रखते हुए देखते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 और पद 4 में पतरस आत्मा से भर गया है। वह प्रेरितों के काम अध्याय 4 और पद 8 में आत्मा से भरा हुआ है। वह उस समूह का हिस्सा है जो प्रेरितों के काम 4:31 में आत्मा से भरा हुआ है। खैर, यह पहले से ही 3 गुना है। 9:17 में पॉल आत्मा से परिपूर्ण। अध्याय 13 में श्लोक 9 के आसपास फिर से यह कहा गया है, पॉल आत्मा से भरकर बोलता है। शायद यह संभव है कि इसके बारे में कुछ विवरणों पर बहस करने के बजाय हम सभी अपने जीवन में भगवान से उनकी आत्मा के कार्य के लिए और अधिक प्रार्थना करना बेहतर समझेंगे। जैसा कि हमने ल्यूक 11:13 में बताया है, यदि हम आत्मा के लिए चिल्लाते हैं, यदि हम ईश्वर के लिए अपनी प्यास को पहचानते हैं, यदि हम पहचानते हैं कि हम इस सारे मिशन को अपने दम पर नहीं बल्कि शक्ति के बल पर पूरा कर सकते हैं, तो वह हमारी सुनेंगे। आत्मा हमारे लिए उपलब्ध है। खैर, अगर हम पिछली शताब्दी या उसके आसपास की चर्चा के इतिहास को देखें तो 19वीं सदी के अंत में कट्टरपंथी इंजीलवादी इन सभी चीजों पर जोर दे रहे थे। वे आत्मा में बपतिस्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। चाहे आप उनकी शब्दावली या उनके नामकरण से सहमत हों या नहीं, इसकी चिंता न करें। वे कुछ अच्छे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वे आत्मा के उंडेले जाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कई लोग उस संबंध में प्रार्थना भी कर रहे थे जिसे वे मिशनरी भाषाएं कहते थे। उन्होंने कहा, देखो, हमें दुनिया में प्रचार करना है। यह एक असंभव कार्य है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें आत्मा की शक्ति की आवश्यकता है। और एक भाषा सीखने में 2 साल क्यों खर्च करें जब ईश्वर इसे चमत्कारिक रूप से हमें दे सकता है। इसलिए वे मिशनरी भाषाओं के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और जो लोग इसके लिए प्रार्थना कर रहे थे उनमें से कुछ वे बन गए जिन्हें हम प्रारंभिक पेंटेकोस्टल कहते हैं। ये वे लोग थे जो मिशनरी भाषाएं खोज रहे थे। वे आत्मा के उंडेले जाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वे आत्मा द्वारा मिशन के लिए सशक्तिकरण के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और वे अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे और वे बहुत उत्साहित थे। वे विदेश चले गए और उन्होंने अपनी मिशनरी भाषाएं आजमाई, और अधिकांश मामलों में कुछ अपवाद भी थे। अधिकांश मामलों में किसी को समझ नहीं आया कि वे क्या कह रहे थे, और वे बुरी तरह निराश हुए, खासकर इसलिए क्योंकि उनमें से अधिकांश ने एक तरफा टिकट खरीदे थे। खैर, आरंभिक पेंटेकोस्टल ने प्रार्थना के लिए अन्य भाषाएं रखी, जैसा कि 1 कुरिन्थियों 14 में था, लेकिन उनमें से अधिकांश ने मिशनरी भाषा के विचार को त्याग दिया। लेकिन मुझे लगता है कि वास्तव में उन्होंने शुरुआत में ही अधिनियमों में संबंध के बारे में कुछ वास्तविक पहचान लिया था। ल्यूक सांस्कृतिक बाधाओं के पार ईश्वर के लिए बोलने की आत्मा की शक्ति पर जोर देता है। इसलिए जीभ कोई मनमाना संकेत नहीं था। भगवान अपने सेवकों को अन्य लोगों की भाषाओं में भगवान की पूजा करने में सक्षम बनाने से बड़ा संकेत क्या दे सकते हैं? तो पेंटेकोस्टल और अन्य लोग कभी कभी बहस करते हैं, क्या जीभ इस सशक्तिकरण का सबूत है? और शास्त्रीय पेंटेकोस्टल हाँ कहते हैं, और अधिकांश अन्य लोग नहीं कहते हैं। लेकिन अगर हम इस सवाल पर ध्यान दें कि क्या वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस सशक्तिकरण का सबूत हैं, तो हम में से कई लोग नहीं कहेंगे। अधिनियम अध्याय 8 में अन्य भाषाओं का उल्लेख नहीं किया गया है इत्यादि, लेकिन इस पर किसी भी तरह से बहस होती है। लेकिन यह सब ठीक है। इस पर आपका जो भी दृष्टिकोण हो, चाहे हम कहें कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका प्रमाण है, और चूंकि मैंने आपको अभी बताया कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है, मुझे नहीं लगता कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। मुझे भी, चूंकि मैं पहले से ही गर्म पानी में हूँ, दूसरे पक्ष के लिए कहने दीजिए, मैं स्वयं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूँ, और अब दूसरी तरफ वापस जा रहा हूँ। आप में से जो लोग इसके खिलाफ हैं, वे मेरे बारे में बुरा न सोचें, क्योंकि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। यह मेरे रूपांतरण के 2 दिन बाद ही मेरे साथ हुआ। मैंने इसके बारे में नहीं सुना था। यह अभी मेरे जीवन में शुरू हुआ है, और मैं तब से यह कर रहा हूँ। लेकिन जब यह पहली बार शुरू हुआ तो मुझे नहीं पता था कि यह क्या है। भगवान ने यह मेरे लिए ही किया। लेकिन उदाहरण के लिए, मेरी पत्नी अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं करती, तो जीभ इस सशक्तिकरण का प्रमाण है। मैं इसे आवश्यक रूप से इसे प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रमाण के रूप में नहीं देखता, बल्कि इस बात के प्रमाण के रूप में देखता हूँ कि अनुभव किस बारे में था। हाँ, यह पवित्र आत्मा में बपतिस्मा की प्रकृति का प्रमाण है कि यह अंतर सांस्कृतिक मंत्रालय के लिए सशक्तिकरण है, और भगवान ने अपने चर्च को अधिकार दिया है कि हम सभी को सांस्कृतिक बाधाओं को पार करना चाहिए। तो यह हमारे बारे में क्या कहता है, चाहे हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें या नहीं? अगर हमें दूसरे लोगों तक पहुँचने की परवाह नहीं है, अगर हम जातीय या नस्लीय आधार पर मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं? खैर, प्रेरितों का काम अध्याय 2 हमें आगे ले जाता है। पिंतेकुस्त के लोग। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 5-13 में स्वर्ग के नीचे हर देश के प्रवासी यहूदियों की बात की गई है। यह राष्ट्रों के लिए उस मिशन का पूर्वाभास देता है जिसके बारे में 1:08 में बात की गई थी। ठीक अधिनियम 8 में अफ्रीकी अदालत के अधिकारी की तरह, ठीक उस मिशन की तरह जो अधिनियम अध्याय 28 में रोम तक पहुंचता है। और यहाँ अन्यत्र की तरह हमारे पास शायद एक और बाइबल संबंधी भ्रम है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 श्लोक 9 से 11 में राष्ट्रों की एक सूची है। खैर, जो यहूदी लोग इसे सुनते हैं या जो लोग बाइबल जानते हैं जिन्होंने इसे सुना है, वे राष्ट्रों की पहली सूची उत्पत्ति अध्याय 10 में राष्ट्रों की सूची के बारे में सोच सकते हैं। और यदि आप वास्तव में गणित में अच्छे हैं तो आप जानते हैं कि जो अध्याय उत्पत्ति 10 के तुरंत बाद आता है वह उत्पत्ति 11 है, जहां भगवान भाषाओं को बिखेरने के लिए नीचे आए थे। ठीक है, यहां आत्मा नीचे आती है और भाषाओं को तितर बितर करती है, लेकिन इस बार बैबेल की तरह लोगों को विभाजित करने के लिए नहीं, बल्कि इस बार आत्मा नीचे आती है और ईसा मसीह के शरीर में एक नई अंतर सांस्कृतिक एकता लाने के लिए भाषाओं को बिखेरती है। अब मैं पहले जिस बारे में बात कर रहा था, प्रारंभिक पेंटेकोस्टलिज्म के बारे में, उस पर वापस जा रहा हूँ। यह कई अलग अलग पुनरुत्थानों के संदर्भ में हुआ था जो हो रहे थे। वेश पुनरुद्धार का नाटकीय प्रभाव पड़ा। इसके अलावा भारत में पंडिता रमाबाई का अनाथालय भावना का एक नाटकीय विस्फोट था। यह लगभग एक ही समय में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्र रूप से हो रहा था। इसके तुरंत बाद कोरियाई पुनरुत्थान हुआ। तो भगवान लगभग एक ही समय में ईसाइयों के विभिन्न समूहों के बीच अलग अलग काम कर रहे थे। कैथोलिक चर्च में भी एक प्रार्थना हुई थी जहां वे प्रार्थना कर रहे थे कि अगली सदी में पवित्र आत्मा का उंडेला जाएगा। इसलिए हम इसे कई अलग अलग कोणों से आते हुए देखते हैं, लेकिन अजुसा स्ट्रीट पुनरुद्धार के रूप में यह अजुसा स्ट्रीट तक फैल गया। यहीं से प्रारंभिक पेंटेकोस्टल पुनरुद्धार वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय हो गया। विभिन्न देशों से लोग आए और बहुत से मिशनरी वहां आए। लॉस एंजल्स में बहुत सारे अलग अलग लोगों के समूह थे। जो व्यक्ति इसका नेतृत्व कर रहा था वह विलियम सेमोर था, जो एक अफ्रीकी अमेरिकी था जो गुलामी में पैदा हुए माता पिता से पैदा हुआ था। खैर, वहां मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि रंग की रेखा खून से धुल गई है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच जातीय पूर्वाग्रह था। सेमोर को यह प्राप्त हुआ था। भाषाओं आदि के बारे में उसकी विशेष समझ उसे यह प्राप्त हुई थी, विशेष रूप से चार्ल्स परम से। चार्ल्स परम उनके श्वेत गुरु थे, लेकिन परम सेमोर की तुलना में एक अलग तरह की चर्च पृष्ठभूमि से आए थे। सेमोर एक ऐसी पृष्ठभूमि से आए थे जहां उन्होंने ईश्वर के प्रति अपना उत्साह बहुत जोर शोर से व्यक्त किया था। पर हम एक अलग तरह की चर्च परंपरा से आए थे जहां वे बहुत शांत थे। जब आत्मा तुम पर आए तो तुम बहुत शांत हो जाओगे। और भगवान दोनों तरह से काम कर सकते हैं, है ना? लेकिन हुआ यह था कि चार्ल्स परम अजुसा स्ट्रीट मिशन पर आए और उन्होंने इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की और सेमोर ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। और परम ने बाहर जाकर अजुसा स्ट्रीट पर जो कुछ हो रहा था उसके बारे में शिकायत की। और एक तरीके से उन्होंने इसके बारे में शिकायत की, उन्होंने कहा कि यह उद्धरण के अलावा और कुछ नहीं, एक अंधेरे शिविर की बैठक थी। अजुसा स्ट्रीट पर जो कुछ हो रहा था उसकी निंदा करने का यह बहुत ही नस्लवादी तरीका था। और सेमोर ने अपना जोर बदल दिया। सेमोर अभी भी भाषाओं को मूल्यवान मानता था। वह अब भी उन बहुत सी चीजों पर विश्वास करता था जिन पर वह पहले विश्वास करता था, लेकिन अब उसने एक और जोर जोड़ा है जो वास्तव में यहाँ पेंटेकोस्ट कथा, आत्मा और जातीय मिलमिलाप में है। क्योंकि उन्होंने कहा, आप वास्तव में आत्मा कैसे रख सकते हैं और नस्लीय आधार पर अपने भाई और बहन से प्यार नहीं कर सकते। जब हम वास्तव में आत्मा के प्रति समर्पण करते हैं तो आत्मा हमें नस्लीय पूर्वाग्रह से परे, जातीय पूर्वाग्रह से परे, वर्ग पूर्वाग्रह से परे, जाति पूर्वाग्रह से परे ले जाएगी। आत्मा हमें एकजुट करेगी ताकि हम ईश्वर के लिए बोल सकें और मसीह के लिए दुनिया तक पहुंचने के मिशन में भागीदार के रूप में मिलकर ईश्वर के लिए काम कर सकें। फिर हम अध्याय 2 श्लोक 17 से 21 में पेंटेकोस्ट की भविष्यवाणी पर आते हैं। ठीक है, पतरस कहता है कि उन्होंने क्या कहा, आपने शिष्यों को विभिन्न भाषाओं में बोलते हुए सुना है। यह भविष्य सूचक सशक्तिकरण के बारे में जोएल की भविष्यवाणी को पूरा करता है। वह जोएल से उद्धरण देता है, लेकिन वह कुछ शब्दों को अपनाता है जो यहूदी व्याख्या में आम था। आप बात को समझने के लिए शब्दों को अनुकूलित कर सकते हैं। जोएल में यह बाद में कहता है, यह वास्तव में अंतिम दिनों में नहीं कहता है, लेकिन पीटर शब्दों को कुछ हद तक अनुकूलित करता है, क्योंकि जोएल के संदर्भ में आप जोएल 3:1 पर जाते हैं। यह इस बारे में बात करता है कि भगवान कब अपने लोगों इसराइल के भाग्य को बहाल करते हैं। तो यह परमेश्वर के लोगों की बहाली के संदर्भ में था, तो बाद में इसका मतलब अंत के दिनों में था। तो पीटर कहते हैं, भगवान कहते हैं, अंत के दिनों में मैं सभी लोगों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। खैर, यही तो हो रहा था। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। यह लिंग संबंधी बाधाओं को भी पार करता है। परमेश्वर पुरुषों और महिलाओं दोनों को यीशु के शुभ समाचार का प्रचार करने के लिए सशक्त करेगा, और फिर बूढ़े और जवान, यह उम्र की बाधाओं को पार कर जाता है। उनके पास सपने और सपने होंगे। खैर, पुराने नियम में सपने और दर्शन किसने देखे थे? विशेष रूप से भविष्यवक्ताओं, विशेष रूप से नहीं, बल्कि विशेष रूप से भविष्यवक्ताओं। और फिर पतरस ने दूसरी पंक्ति जोड़ी, क्योंकि उसमें कहा गया कि तेरे बेटे बेटियां दास दासियों के विषय में भविष्यद्वाणी करेंगे, मैं अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। और फिर वह पंक्ति में जोड़ता है, और वे भविष्यवाणी करेंगे। खैर, जोएल ने पहले ही भविष्यवाणी का उल्लेख किया है, लेकिन पीटर ने इसका फिर से उल्लेख किया है। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आप बात न चुकें। यह वही आत्मा है जिसने पुराने पैगंबरों को सशक्त बनाया। अब वही भावना हम परमेश्वर के लोगों को सशक्त बना रही है। और वैसे जब वह पुरुष और महिला नौकरों के बारे में बात करता है, तो दूसरी जगह जहां नौकरानी शब्द का उपयोग किया जाता है, वह ल्यूक अध्याय 1 में मैरी के लिए होता है, जब आत्मा उस पर आती है और उसके पास वह आत्मा होती है जिसके कारण यीशु गर्भवती होती है उसके अंदर। तो यह वास्तव में आत्मा के साथ उसका दूसरा अनुभव है, लेकिन उसे भगवान की दासी भी कहा जाता है। इसलिए वह एक अर्थ में पिंतेकुस्त के दिन चर्च के लिए आदर्श बन जाती है, क्योंकि भगवान अपनी आत्मा को उंडेलते हैं, भगवान के प्रति समर्पण करते हैं, भगवान द्वारा जिस भी तरीके से वह हमारा उपयोग करना चाहते हैं उसके लिए तैयार रहते हैं। और फिर वह स्वर्ग और पृथ्वी पर संकेतों के बारे में बात करते हुए जोएल को उद्धृत करता है, लेकिन वह चमत्कार शब्द भी जोड़ता है। क्यों? क्योंकि वह पृथ्वी पर जो हैं उन पर बल देना चाहता है। अभी तक वह सब कुछ नहीं हुआ है जिसके बारे में जोएल ने कहा था, लेकिन यह पूर्ति का समय है। इसीलिए श्लोक 23 में जैसे ही उसने जोएल को उद्धृत करना समाप्त किया, क्षमा करें, श्लोक 22, जैसे ही उसने जोएल को उद्धृत करना समाप्त किया, वह नासरत के यीशु के बारे में बोलता है जो परमेश्वर द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति था जिसने आपके बीच चमत्कार और संकेत दिखाए। और निःसंदेह आपके पास यीशु की मृत्यु के संकेत थे, जैसे सूर्य का अंधकार में बदलना इत्यादि। तो वह जोएल जो कहता है उसे उद्धृत करने के लिए आगे बढ़ता है, जो कोई प्रभु के नाम से पुकारता है, और जोएल में यह वह है जो यहोवा के नाम से पुकारता है, जो कोई भी परमेश्वर के नाम से पुकारता है वह बच जाएगा। वह वहां उद्धरण को तोड़ देता है, लेकिन उसने जोएल के बारे में सोचना समाप्त नहीं किया है, क्योंकि बाद में श्लोक 39 में वह फिर से उस हिस्से को उठाता है जहां वह वाक्य जोएल में चला गया था। जोएल ने आगे कहा, जिस किसी को हमारा परमेश्वर यहोवा बुलाएगा और पत्रस अपने संदेश के अंत में कहता है, हे तुम्हारे बेटे बेटियां, सब दूर दूर से जितने को हमारा परमेश्वर यहोवा बुलाएगा। तो वह अभी भी जोएल के बारे में सोच रहा है। वह मिड्रैश के साथ एक अच्छे यहूदी दुभाषिया की तरह काम कर रहा है। वह अपने द्वारा उद्धृत अंतिम पंक्ति ले रहा है और वह इसकी व्याख्या करने जा रहा है। प्रभु का नाम लेने का क्या मतलब है? अभी मोक्ष का युग है, अब उफंती भावना का युग है, अब भविष्य सूचक सशक्तिकरण का युग है। खैर, इसलिए यह युग है कि जो कोई भी भगवान का नाम लेगा उसे बचाया जाएगा। ये आखिरी दिन है और निःसंदेह हम जानते हैं कि यह आज हमारे लिए सच है, क्योंकि यदि यह तब आखिरी दिन थे तो अब यह पहले के दिन नहीं है। परमेश्वर ने उस समय आत्मा को बाहर नहीं डाला और बाद में आत्मा को वापस उंडेल दिया। लेकिन इसका क्या मतलब है कि जो कोई प्रभु के नाम से पुकारेगा उसे बचाया जाएगा? खैर, हम मसीह के लिए अंतिम समय के पैगंबर के रूप में सशक्त हैं। आप प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़े। यह प्रभु के वचन के बारे में बात करता है जिसका पुराने नियम में अर्थ टोरा हो सकता है। इसका मतलब भविष्यवाणी संदेश भी हो सकता है। हमारे लिए भी अधिनियमों की पुस्तक में, जैसे वे सुसमाचार और आत्मा की शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, वह प्रभु का वचन है। तो आपके पास अधिनियमों की पुस्तक में भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं। लेकिन तब भी जब हम लोगों के साथ सुसमाचार साझा कर रहे हैं, और वास्तव में ल्यूक का जोर इसी पर है, जब हम लोगों के साथ सुसमाचार साझा कर रहे हैं तो हम भरोसा कर सकते हैं कि भगवान की आत्मा इन लोगों से मसीह बोल रही है, ताकि हम भरोसा कर सकें कि अगर भगवान उनके दिल को छूते हैं तो भगवान इस सुसमाचार के माध्यम से उनके दिल को छूते हैं, भगवान इसमें हमारा उपयोग कर रहे हैं रास्ता, और सभी विश्वासी उस शक्ति को अपना सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि ईश्वर हमारे माध्यम से बोलेंगे, लोगों तक मसीह की खुशखबरी पहुंचाएंगे। खैर, किसी भी मामले में, सभी प्राणियों की बातचीत में शायद जोएल का यही उद्धरण है, लेकिन शायद पीटर को यह भी एहसास नहीं है कि इसके क्या निहितार्थ हैं, क्योंकि उसे अन्य जातियों के बारे में सोचने में थोड़ी देर लग जाती है। लेकिन पिंतेकुस्त का उपदेश, अब वह इस अनुच्छेद की व्याख्या करने जा रहा है। वह जोएल 2:3-2 से जोएल के उद्धरण को तोड़ता है और फिर वह श्लोक 39 में अपने उपदेश के अंत में जोएल के उद्धरण 2:3-2 के शेष भाग को उठाता है और श्लोक 21 और 39 के बीच वह समझा रहा है कि उसने अभी श्लोक 21 में क्या उद्धृत किया है। प्रभु का नाम क्या है? मुक्ति के लिए यहोवा का नाम क्या है? खैर, अच्छे यहूदी मध्यराशि रूप में वह सामान्य कुंजी शब्दों के आधार पर कुछ ग्रंथों को एक साथ जोड़ता है। बाद के रब्बियों द्वारा इसे गेजर हाशावा कहा गया। वह सामान्य कीवर्ड के आधार पर इन पाठों को एक साथ जोड़ता है। वह भजन संहिता के 2 पाठों को एक साथ जोड़ता है। वह कहता है, ठीक है, प्रभु पिता के दाहिने हाथ पर है। हम गवाह हैं कि यीशु पुनर्जीवित हैं और उन्हें महान बनाया गया है। खैर, जो पुनर्जीवित हो गया है वह ईश्वर के दाहिने हाथ पर है, भजन 16 कहता है, और जो ईश्वर के दाहिने हाथ पर है, भजन 110 कहता है, वह प्रभु है। और इसलिए भगवान का नाम लेने का क्या मतलब है? आप प्रभु का नाम ले सकते हैं जो प्रभु के दाहिने हाथ पर है, और जो उठ गया और ऊंचा हो गया उसका नाम यीशु है। तो यहां बताया गया है कि आप दिव्य भगवान का नाम कैसे पुकारते हैं। वह अधिनियम 2:38 में कहता है, पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो। तो यह पहला ईसाई उपदेश था जिसने पहले ही स्वीकार कर लिया था कि यीशु दिव्य हैं, कि यीशु यहोवा हैं। अब यहाँ पीटर इसे घर लाता है और 2:37 में पीटर से पूछा गया है, बचाए जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पत्रस कहता है, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। अब यहूदी लोगों के लिए बपतिस्मा लेना एक क्रांतिकारी बात थी और उनके पास अपने नियमित औपचारिक चित्रण थे, लेकिन जब यह सभी के लिए एक बार का मोड़ था तो यह काफी अलग बात थी। पश्चाताप पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की भाषा को उद्घाटित करता है। कभी कभी लोगों ने कहा है, ठीक है, यह सिर्फ मन का बदलाव है, इस बारे में आपके सोचने के तरीके का बदलाव है, लेकिन यह वास्तव में उससे कहीं अधिक था। आप एक शब्द नहीं ले सकते हैं और उसे घटक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं और कह सकते हैं इसका यही मतलब है। शब्द का अर्थ है जिस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है, और यह शब्द वास्तव में उसी तरह से उदाहरण देता है जिस तरह से नए नियम में इसका उपयोग किया गया है, विशेष रूप से पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की भाषा में, जब वे इसराइल के बारे में बात कर रहे होते हैं, भगवान की ओर मुड़ते हैं, इसलिए वह उन्हें मुड़ने के लिए बुला रहा है। और जब वह उन्हें बपतिस्मा लेने के लिए बुला रहा था, जब अन्य जाति यहूदी धर्म में परिवर्तित हो रहे थे, तो उन्हें पानी में डुबा दिया जाएगा। अब यह केवल यहूदी साहित्य में ही वर्णित नहीं है। इस काल से इस बारे में जानने वाले कुछ अन्य जातियों द्वारा यह भी बताया गया है कि यहूदी लोग अन्य जातियों से पानी में बपतिस्मा लेने की अपेक्षा करते थे, तो यह बहुत कठिन नहीं होने वाला है। उनके पास पूरे मंदिर में विसर्जन कुंड थे क्योंकि लोग नियमित रूप से औपचारिक चित्रण करते थे। वास्तव में वे आम तौर पर नग्न अवस्था में ऐसा करते थे। तो आपके पास पुरुष एक जगह जा रहे होंगे और महिलाएं दूसरी जगह जा रही होंगी और लोग बस खुद को पानी में डुबाएंगे और फिर बाहर निकलेंगे। लेकिन टेम्पल माउंट में पानी बहुत था, वहां कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब वह उन्हें बपतिस्मा लेने के लिए बुलाता है, तो यह आपके मंदिर में जाने से पहले केवल एक नियमित औपचारिक सफाई नहीं है। यह एक प्रकार के पश्चाताप, ईश्वर की ओर मुड़ने के साथ जुड़ा हुआ है। यह एक विशेष प्रकार का मोड़ है जहां आप अपना पूरा जीवन ईश्वर को सौंपने जा रहे हैं। वह उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो वह उन्हें भगवान के पास आने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। वह उन्हें अन्य जातियों के समान शर्तों पर भगवान के पास आने के लिए बुला रहा है, जिसका अर्थ है कि हम में से कोई भी केवल अपने वंश पर निर्भर नहीं रह सकता है। मेरा पालन पोषण किसी ईसाई घर में नहीं हुआ, लेकिन जो लोग ईसाई घरों में पले बढ़े हैं, उनके लिए हम केवल अपने माता पिता के विश्वास पर निर्भर नहीं रह सकते। हम सिर्फ अपने दादा दादी के विश्वास पर निर्भर नहीं रह सकते। यह अच्छा है कि उनमें यह विश्वास है, परंतु उसी प्रकार पिंतेकुस्त के दिन पर भी वे निर्भर नहीं रह सकते थे। हम चुने हुए लोगों में से हैं। हम सभी को मसीह में विश्वास के साथ ईश्वर के पास आना होगा। हम सभी को मसीह पर भरोसा रखना है। अब जब पत्रस कहता है कि पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, तो इस पश्चाताप को व्यक्त करने का तरीका बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वे जो प्रश्न पूछते हैं वह यह है कि बचाए जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यह एक ऐसा प्रश्न है जो ल्यूक 1 में अन्यत्र पूछा जाता है। ल्यूक अध्याय 18 में अमीर शासक को याद करें। वह कहता है, अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु कहते हैं, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बेच दो और गरीबों को दे दो, जिसे यीशु ने भी अपने शिष्यों से 12:33 और विशेष रूप से 14:33 में कहा था। राज्य की भलाई के लिए अपने संसाधनों को समर्पित करने की बात की थी। यदि आप वास्तव में ईश्वर की ओर मुड़ रहे हैं, तो आपके पास जो कुछ भी है और आप जो कुछ भी हैं, आप उसका उपयोग ईश्वर के उद्देश्यों के लिए करना चाहेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई आपको जो कुछ भी बताता है वह भगवान के उद्देश्यों के लिए है, लेकिन आप अपना जीवन भगवान के उद्देश्यों के लिए समर्पित करना चाहते हैं। यहाँ वह कहते हैं, जब वे पूछें कि उन्हें क्या करना चाहिए तो पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो। प्रेरितों के काम अध्याय 16 में फिलिप्पी जेलर कहता है, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पॉल कहते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करो और तुम और तुम्हारा परिवार बच जाएंगे। अब प्रत्येक मामले में उत्तर कुछ अलग है, लेकिन वे सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि यदि हम वास्तव में यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम वास्तव में अपना सब कुछ यीशु पर दांव पर लगा देते हैं। हम अपने लिए कुछ भी क्यों रखना चाहेंगे? यीशु हमारा जीवन बचाता है। वह हमें सिर्फ पाप के दंड से ही नहीं बचाता, वह हमें पाप से बचाता है, वह हमें हमारे विद्रोह से बचाता है, वह हमें अपने साथ एक रिश्ते में लाता है। हम ईश्वर के शत्रु होने से, ईश्वर के पक्ष में होने से, ईश्वर की सेवा करने की ओर बढ़ते हैं। हम सचमुच उनकी सेवा करना चाहते हैं। हम वास्तव में उसे खुश करना चाहते हैं। अब फिर से, भले ही सिद्धांत रूप में हम रूपांतरण के समय पाप के प्रति मर चुके हैं, हर कोई एक ही बार में यह सब अनुभव नहीं करता है। कभी कभी पवित्र आत्मा के संबंध में विकसित होने में कुछ समय लगता है, लेकिन अंततः हम यही चाहते हैं। और समुदाय यहां यही अनुभव कर रहा था, और यह बहुत स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। 2:41 में आपके पास प्रभावी सुसमाचार प्रचार है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, 2:47 में समुदाय जिस तरह से रहता है उसके माध्यम से आपके पास प्रभावी प्रचार है। और हम समुदाय में बदलाव को इस बात से देखते हैं कि वे एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे एक साथ पूजा करते हैं, वे एक साथ भोजन करते हैं, वे घर घर जाकर एक साथ भोजन करते हैं। यह संगति है। वह एक अनुबंधित रिश्ते को व्यक्त करने का एक तरीका था। इसलिए उदाहरण के लिए एक ग्रीक कहानी में यह बताया गया है कि कैसे विपरीत पक्षों के दो योद्धा एक दूसरे के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे थे। वे एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और तब उन्हें पता चला कि इस व्यक्ति के पिता ने वर्षों पहले एक भोज में इस व्यक्ति के पिता की मेजबानी की थी। खैर, इसका मतलब यह था कि उनके पिताओं के बीच और इसलिए उनके बीच एक वाचा का रिश्ता था। एक साथ भोजन करने का मतलब अनुबंध साझा करना था। इसीलिए जब यीशु पापियों को अपने साथ लाने के लिए उनके साथ भोजन कर रहे थे तो फरीसी इतने परेशान हो गए, लेकिन यहां विश्वासी एक साथ भोजन कर रहे हैं। यह अनुबंधित संगति का प्रतीक है, जिसे कभी कभी अलग अलग संस्कृतियों में कुछ अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन एक साथ एकता और एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। वे एक साथ मिलकर प्रार्थना करते रहते हैं। और श्लोक 44 और 45 में इसका मर्म है, और हम जानते हैं कि यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अध्याय 4 में आत्मा के अगले उंडेले जाने पर यह फिर से होता है। लेकिन आत्मा के उंडेले जाने के परिणामों में से एक साझा संपत्ति थी, 244 और 45। वे एक दूसरे के लिए बलिदान देने को तैयार थे। और इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने तुरंत अपना सारा सामान बेच दिया और सड़क पर आ गए, लेकिन इसका मतलब है, जैसा कि अध्याय 4 में स्पष्ट किया गया है, कि जब भी किसी को जरूरत होती थी तो लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कुछ उनके पास होता था उसे बेच देते थे। ऐसा नहीं था कि संपत्ति बुरी थी, लेकिन वे संपत्ति से ज्यादा लोगों को महत्व देते थे। और यदि हमारे पास संसाधन हैं तो उन चीजों को प्राप्त करने के बजाय जो समय के साथ अपना मूल्य खो सकते हैं, क्यों न हम वैसा करें जैसा हमारे प्रभु यीशु ने कहा था और स्वर्ग में अपना खजाना जमा कर दिया, जिसका अर्थ है लोगों में निवेश करना, उन चीजों में निवेश करना जो भगवान के लिए मायने रखती हैं, उपयोग करना राज्य के लिए हमारे संसाधन। आरंभिक चर्च ने यही किया। कभी कभी हम उन तरीकों से आत्मा के उंडेले जाने के बारे में बात करना चाहते हैं जो अधिक आत्म केंद्रित होते हैं, लेकिन प्रेरितों के काम की पुस्तक में आत्मा का उंडेला जाना, खासकर जब आत्मा समुदाय में उंडेला गया था, एक समूह के रूप में विश्वासियों पर उंडेला गया था, इसका मतलब था कि वे दूसरों तक खुशखबरी लेकर पहुंचे, और इसका मतलब यह भी था कि उन्होंने एक दूसरे के प्रति प्यार में इसे व्यक्त किया। आत्मा के उंडेले जाने को कई अलग अलग तरीकों से व्यक्त किया गया था। कभी कभी एक चर्च एक पर जोर देगा, कोई एक चर्च दूसरे पर जोर देगा। आइए जानें कि बाइबल आत्मा के उंडेले जाने के बारे में क्या कहती है। और इस प्रकार हम पिंतेकुस्त के उद्देश्य पर आते हैं। हम ऐसे रूपांतरण देखते हैं जिनके बाद शिष्यत्व आता है। लोगों ने प्रार्थना में भाग लिया और जिसे हम बाइबल अध्ययन कह सकते हैं। पाठ में यह प्रेरितों की शिक्षा है, लेकिन बाइबल अध्ययन में हमारे लिए यह सबसे अधिक उपलब्ध है। जब हम इस बारे में बात करते हैं कि भगवान ने क्या कहा है, तो हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह वह सब कुछ है जो भगवान ने कभी कहा है। मेरा मतलब है, एक किंग्स अध्याय 18 में ओबद्याह कहता है कि उसने एक गुफा में 100 भविष्यवक्ताओं को छुपाया था। उनकी भविष्यवाणियां हमारे पास दर्ज नहीं हैं। नए नियम के गृह चर्चों में ये सभी भविष्यवाणियां हमारे लिए बाइबल में दर्ज नहीं हैं। बाइबल वह सब कुछ नहीं है जो परमेश्वर ने कभी किसी से कहा है। परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारे पास हर वह व्यक्ति नहीं है जिसका नाम बाइबल में व्यक्तिगत रूप से जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। यह वह सब कुछ नहीं है जो भगवान ने कभी कहा है, लेकिन यह सिद्धांत है। यह मापने की छड़ी है जिसके द्वारा हम बाकी सभी चीजों का आकलन करते हैं। ईश्वर ने हमें जो संदेश दिया उसका समय समय पर परीक्षण किया गया है। भविष्यवक्ताओं का संदेश, यिर्मयाह के समय में कई भविष्यवक्ता, लेकिन उनमें से अधिकांश झूठे साबित हुए। यिर्मयाह की भविष्यवाणी का समय के अनुसार परीक्षण किया गया, उनकी भविष्यवाणी सच हुई। तो हमारे पास इन पवित्र प्रेरितों और पैगंबरों का संदेश है जो हमें धर्म ग्रंथों में दिया गया है, और इसलिए हम उसका अध्ययन कर सकते हैं और यह हमें ईश्वर के साथ अपने रिश्ते में सही राह पर रखेगा। तो जैसे उन्होंने प्रार्थना और बाइबल अध्ययन या प्रार्थना और प्रेरितिक शिक्षा दी, हम बाइबल का अध्ययन करके उस प्रेरितिक शिक्षा का बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास संकेतों के साथ निरंतर गवाही थी जिसका उल्लेख प्रेरितों के काम अध्याय 2 में किया गया है, और इसका एक उदाहरण आपको प्रेरितों के काम अध्याय 3 में मिलता है। वे प्रार्थना करने जा रहे हैं और भगवान एक संकेत देते हैं, लेकिन यह सिर्फ नाटकीय संकेत नहीं है जिनके बारे में हम अक्सर सोचते हैं। मेरा मतलब है, आपके पास ये चीजें हैं। हम पिंतेकुस्त के दिन उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास न केवल आत्मा के उपहार हैं, बल्कि आपके पास आत्मा का फल भी है। लोगों ने अपनी संपत्ति छोड़ दी क्योंकि वे अपनी संपत्ति से अधिक एक दूसरे को महत्व देते थे और चर्च बढ़ता रहा। तो आत्मा का फल, हमारा जीवन आत्मा द्वारा बदल जाता है। ईश्वर हमें सांस्कृतिक बाधाओं को पार करने, उसकी पूजा करने, मसीह और एक दूसरे के प्रति समर्पित उपासकों का एक नया बहुसांस्कृतिक समुदाय बनाने के लिए आत्मा के साथ सशक्त बनाता है। यह एक्ट्स की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र 7 अधिनियम अध्याय 1 और 2 है।